हरे कृष्ण। तो पिछली बार हम लोगों ने ये चैप्टर लिया था, इंट्रोडक्शन टू हरे कृष्ण जप। तो इसमें ये सेक्शन है, डिटर्मिनेशन टू चैंट डेली राउंड्स। रूप गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी उद्देशामृत में बता रहे हैं, उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संगत त्यागा सतो वृते षडवीर भक्ति प्रसिद्धति एंथुजियाज्म पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन। तो तीनों की आवश्यकता है। श्रील भक्तों ठाकुर ने भी इस बात का वर्णन किया है भक्त्यालोक में। भक्तों ठाकुर कहते हैं कि फेथ के साथ एंथुजियाज्म की बहुत आवश्यकता है, कोई अगर निष्ठा के स्तर पर पहुंचना चाहता है। तीव्रे न भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम, भागवत में लिखा जैसे अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार दी, तीव्रे न भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। तो तीव्रे न भक्ति योगे न का मतलब यही है कि तीव्रता से भक्ति करनी है। इसका अर्थ क्या है तीव्रता से भक्ति करने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि उत्साहित होकर एंथुजियाज्म से डिवोशनल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना। एंथुजियाज्म होना बहुत जरूरी है, प्रचार के लिए उत्साह, सेवाओं के लिए उत्साह, उत्साह से होना चाहिए। और उत्साह आएगा हमें जब हम उत्साहित भक्तों के साथ रहें। जो भक्त उत्साहित नहीं है उनके साथ बैठेंगे तो हमारा उत्साह भी कम हो जाएगा। तो उत्साहित जो भक्त हैं महामंत्र का जप करने के लिए, संख्या को पूरा करने के लिए, ऐसे भक्तों के सानिध्य में रहकर हमें जप करना चाहिए। और जहाँ उत्साह होगा और धैर्य होगा और दृढ़ता होगी या निश्चय होगा, तो निश्चित रूप से हम देखेंगे आध्यात्मिक जीवन में हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अधिकांश ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे भक्तों से दूर रहते हैं जो उत्साहित होते हैं, जिनमें धैर्य होता है, जिनमें दृढ़ता होती है, जिनमें ये गुण होते हैं, उनसे हम दूर रहते हैं। क्योंकि हमारी आसक्ति जो है संसार से बहुत ज़्यादा है, और इस आसक्ति को अगर त्यागना है तो ऐसे भक्तों का संग बहुत आवश्यक। और इन आसक्तियों के कारण ही हम लोग आध्यात्मिक जीवन में आलसी हो जाते हैं। कई लोग भौतिक जीवन में बहुत सक्रिय होते हैं, दिन से रात दिन रात परिश्रम करते हैं, सुबह सुबह जाते हैं। आप जाएंगे अगर बॉम्बे जाएंगे, दिल्ली में भी अब हो गया ऐसे तो, लेकिन बॉम्बे में हमने तो 1970s 1980s से देखा है, दिल्ली में तो अब होने लगा है। लेकिन बम्बई में शुरू से सुबह सुबह लोग 5 बजे जो है ट्रेन में जाने लग जाएंगे। वहाँ पर ट्रेन केवल 2 घंटे रुकती है रात को, बस 2 घंटे विश्राम है ट्रेन का, 2 बजे से लेकर रात को और सुबह 4 बजे तक। उसके बाद ट्रेन चलती रहती है नॉनस्टॉप, और लोग इतना फास्ट लाइफ है कि लोग इतनी तेज़ी से मूव करते हैं, अंधेरी से थाना जा रहे हैं, थाना से अंधेरी आ रहे हैं, 1.5-2 घंटे का सफ़र करते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से बस पकड़ते हैं, फिर अपने फैक्ट्री में ऑफिस में पहुँचते हैं, फिर वहाँ पर 12-13 घंटा काम करके फिर उसके बाद घर आते हैं, और घर आके थोड़ा बहुत कुछ खा लिया, TV देख लिया, सो गए। इस तरह से कई महीने कई साल बीत जाते हैं, और यही वही सोचते हैं कि एक दिन आएगा हम होंगे कामयाब, हम शांति से जीवन बिता पाएंगे। लेकिन ऐसा समय आता नहीं है, ऐसा पूरा जीवन बीत जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में हम लोग उतने उत्साहित नहीं होते हैं, हम आलसी हो जाते हैं, ये देखा गया है। कई बार भौतिक जीवन में जो सक्रिय रहे हैं बहुत, आध्यात्मिक जीवन में आने पर वो आलसी हो जाते हैं। भौतिक जीवन में भय के कारण, डर के कारण लोग कार्य करते हैं, कोई प्रेम से तो कार्य करता नहीं। वहाँ अपने आपके बॉस से कोई प्रेम थोड़ा होता है, या बिजनेस भी कर रहे हैं कोई कस्टमर से प्रेम थोड़ा आपका कोई। लेकिन वहाँ पर कंडीशनिंग है, भौतिक जगत में हर चीज में कंडीशनिंग है, हेतु है। और आध्यात्मिक जीवन बिना हेतु के होना चाहिए, बिना किसी कारण के, बिना किसी रुकावट के। और भौतिक जीवन में रुकावट है और हेतु है, दोनों है। बिना कारण के बिना हेतु के कोई आपका कार्य नहीं करने वाला है। इसलिए प्रभुपाद ने बड़ा सही शब्द का उपयोग किया है, कंडीशन सोल, बद्ध जीवात्मा। हम सब बद्ध हैं क्योंकि बिना किसी कंडीशन के हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते हैं भौतिक जगत में। लेकिन वही कंडीशन जब आध्यात्मिक जीवन हम डाल देते हैं तो आध्यात्मिक जीवन हमारा निष्क्रिय हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन में कंडीशन नहीं चलता, इसलिए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अनअलॉयड रहना पड़ेगा। अलॉय का मतलब होता है जब कई धातुओं का मिश्रण होता है तो उसको अलॉय कहते हैं। प्रभुपाद ने देखिए कितने सुंदर शब्दों का उपयोग किया है। तो प्रभुपाद कहते हैं डिवोशनल सर्विस मस्ट बी अनअलॉयड, इस प्रकार का मिश्रण नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में सक्रिय बनने के लिए और उत्साहित रहने के लिए एंथुजियाज्म, पेशेंस, डिटर्मिनेशन, उत्साह के साथ धैर्य की भी आवश्यकता है, पेशेंस की आवश्यकता है, डिटर्मिनेशन की आवश्यकता है। कोई गोल हमने सेट किया है तो उस गोल को अचीव करने के लिए उत्साह की आवश्यकता पड़ती है और पेशेंस की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो पेशेंस होता है इसी को टॉलरेंस कहते हैं, यानी कि सहन करना। सफलता है या नहीं है, आध्यात्मिक जीवन में आप असफल हो रहे हैं या सफलता मिल रही है, दोनों ही के कारण कौन है? कृष्ण है। अगर हम लोग सक्रिय हैं तो, अगर कृष्ण भावना में सक्रिय हैं और फिर भी असफलता नजर आ रही है तो उसके कारण भी कृष्ण है, सफलता है उसके कारण भी कृष्ण है। असफलता कृष्ण इसलिए क्यों दे रहे हैं? हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि मैं इसको इस तरह का कष्ट दे के देखता, अब देखते हैं क्या करता है। इसके पीठ में दर्द शुरू कर देता हूं या इसका धन लूट लेता हूं, इसके घर में कुछ चोरी करवा देता हूं, इसके बिजनेस में लॉस करा देता, तब देखते हैं कि ये भक्त क्या करता है। तो हमारी सिंसियरिटी को, हमारे सरेंडर को, हमारे डेडिकेशन को कृष्ण जो है हमेशा परखते रहते हैं, आजमाते रहते हैं। और जो भक्त इसमें सफल हो जाते हैं वो बड़ी आसानी से आगे बढ़ जाएंगे भक्त। और इसलिए सहन करना बहुत जरूरी है। और हमारे लिए सहन क्या करना है? 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करना, ये सहन करना हो गया। श्रवण कीर्तन हमारे लिए तपस्या है। आज हम लोग पढ़ रहे थे भागवत में, सुबह सुन रहे थे, मैं सुंदर प्रभु बता रहे थे किस तरह से वैकुंठ जगत का वर्णन किया गया है भागवत में। ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वैकुंठ जगत कितना सुंदर है, वह नाना प्रकार के पक्षी जितने भी हैं वो सब कृष्ण की लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं। और कृष्ण की लीलाओं का गुणगान का जब समय आता है तो अपने अपने मधुर आवाजों को भूल जाते हैं। कोयल की आवाज है, चकोर है, चाकरवाक, मोर है, तोता है, अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं, कोयल है, अलग अलग प्रकार की आवाजें निकालते हैं, बड़ी मधुर होती है उनकी आवाजें। तो अपनी आवाजों में वो ध्यान नहीं देते हैं, वो क्या ध्यान देते हैं? कृष्ण कथा में। तो इसलिए वहां पर, क्योंकि उद्देश्य है कृष्ण को प्रसन्न करना, इसलिए आपस में किसी प्रकार का द्वेष नहीं रहता है कि मेरी आवाज ज्यादा अच्छी है, इसकी आवाज ज्यादा अच्छी है। वो अपनी आवाजों को भूलकर कृष्ण की लीलाओं को सुनना चाहते हैं और उनका ही गुणगान करना चाहते हैं। कृष्ण केंद्र बिंदु है। तो इसलिए वहां पे श्रवण कीर्तन क्या है? तपस्या नहीं है, हमें बता रहे हैं। यह श्रवण कीर्तन हमारे लिए तपस्या है। एक जगह बैठ के जप करना, एक जगह बैठ के जप नहीं कर पा रहे हैं, सो जाते हैं, निद्रा आ जाती है, तो खड़े होकर जप कर रहे हैं लेकिन एक ही स्थान में है। उससे क्या है कि हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, जब एक जगह बैठ के जप करते हैं तो उस अभ्यास से ही हमारे अंदर क्या आ जाता है? हमारा धैर्य बढ़ने लगता है। एक जगह जब खड़े होकर जप करते हैं, प्रत्येक दिन 2 घंटा एक जगह रहेंगे तो हमारा धैर्य बढ़ जाएगा। मन को नियम की आवश्यकता है, मन को क्या प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जैसे कि भगवान गीता में कह रहे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम समेतेन्द्रियः, यानी कि जो श्रद्धावान व्यक्ति है वो ज्ञान प्राप्त करता है, जो समर्पित है, श्रद्धा है, और जिसने अपने इंद्रियों का दमन किया हुआ है, सेल्फ कंट्रोल्ड है, जो वो वास्तव में दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है। तो हमारे लिए इंद्रियों का दमन क्या है? एक ही स्थान में रहकर जप करना। क्या डिटर्मिनेशन है? क्या विचार किया हमने कि हम लोग 16 माला यहीं पर रहकर समाप्त करेंगे, हम कहीं जाएंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे, ना ईमेल चेक करेंगे अभी, ना अभी हम मोबाइल कॉल्स अटेंड करेंगे, ना हम घर की समस्याओं को भी सुनेंगे कि परिवार में क्या झगड़ा चल रहा है, पड़ोस में क्या झगड़ा चल रहा है, कोई ग्राम्य कथा नहीं होगी, क्योंकि कलयुग का जो है प्रोसेस यही है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम है, वह केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते हुए कथिर था। तो यानी कहने का अर्थ है इसको हमें प्रायोरिटी देना है चैंटिंग को। वो बंद कराए बात पीछे कोई बात कर रहा है। प्रभुपाद इसलिए बोलते हैं कि अटेंटिव चैंटिंग का मतलब यही है, अटेंटिव चैंटिंग का मतलब यह है कि चैंटिंग के समय और कुछ कार्य नहीं हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार हमारी व्यवस्था होनी चाहिए पहले से, जब शुरू करने से पहले हम ये वातावरण बनाएं, पहले ये परिस्थिति पहले हम लोग क्रिएट करें कि ऐसी परिस्थिति में ऐसे वातावरण में ऐसे समय में ऐसे काल में हम लोग महामंत्र का जप करेंगे जब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करे, ये पहले हमें विचार करना चाहिए। भजन के लिए स्थान चुनना बहुत जरूरी है, जैसे भगवान गीता बता रहे हैं 18वें अध्याय में श्लोक संख्या 14 भगवान बता रहे कर्म के 5 कारण, तो उसको हम भक्ति मार्ग में भी ले सकते हैं। पहला उन्होंने बताया अधिष्ठानम, अधिष्ठानम कौन है, अधिष्ठानम का मतलब क्या है, स्थान लोकेशन। बिजनेस को भी आप सफल बनाने के लिए सबसे पहले आप लोकेशन ढूंढते हैं, है कि नहीं। आप ये तो नहीं कि आप घर के अंदर खोल लो कोई दुकान, सोचो कि घर पे लोग आएंगे और आपका घर कहीं है किसी वीरान जगह में, तो आपको जाना पड़ेगा वहां जहां कस्टमर्स है, ग्राहक है। इसलिए प्रभुपाद ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जोर दिया कि आप लोग मंदिर के बाहर जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, लोगों तक पहुंचो, ये उम्मीद मत करो कि लोग आपके पास आए। कलयुग में ऐसा ही है प्रोसेस, इसलिए जगन्नाथ जी को भी मंदिर छोड़ के जाना पड़ता है अपना दर्शन देने के लिए। तो स्थान को चुनना बहुत जरूरी है। और ब्रह्मा जी बता रहे हैं भागवत में, ज्ञाने प्रयास उदुपास नमंतेव जीवन सत मुखरिताम भवती वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनवान मनोवी। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ज्ञान के प्रयास को त्यागो और जिस स्थान में हो उसी स्थान में रहो, ब्रह्मचारी हो ब्रह्मचारी रहो, गृहस्थाश्रम में हो गृहस्थाश्रम में रहो। और हमारे लिए श्लोक कैसे हम लागू करें इसको, जप में चैंटिंग में, यानी जिस स्थान में हो उस स्थान में रहो, स्थान छोड़ो नहीं। अगर विचार किया पहले आपने कि कमरे में बैठ कर जप करना तो वहीं रहो, फिर पार्क में मत जाना। अगर पार्क में विचार है करने का तो पार्क में करो फिर, और फिर विचार करो आप कि सर्दी के मौसम में पार्क में जा पाऊंगा मैं, या ठंड के मौसम में जा पाऊंगा, या बारिश के मौसम में जा पाऊंगा क्या मैं, तो फिर उस समय फिर मेरा जब डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर मैं कौन सा स्थान चुनूंगा। तो हमें ऐसा स्थान चुनना है जो 12 महीने हमारे लिए निर्धारित हो। हाँ, हफ्ते में एक आध दिन थोड़ा बहुत चेंज होता है चल जाएगा, लेकिन रेगुलर रूटीन के लिए हमें लोकेशन सूट लोकेशन को चूज करना बहुत जरूरी है, ये बहुत आवश्यक। तो यहां पर ये बताया कि कई ऐसे भक्त हैं जो 64 माला जो करते हैं बिना पानी के पिए, जब तक 64 माला पूरी नहीं होगी तब तक वो पानी नहीं पिएंगे। जैसे रामाचार्य हरिदास ठाकुर, कई बार गोविंद महाप्रभु के जो सेवक थे वो जगन्नाथ जी का प्रसाद लाते हैं, हरिदास ठाकुर यही कहते हैं कि मेरी भी संख्या पूरी नहीं हुई है। और महाप्रसाद को आदर देने के लिए एक दाना मुंह में डाल लेते फिर माला अपनी आगे बढ़ाते, क्योंकि महाप्रसाद को कभी मना नहीं करना चाहिए। लेकिन हरिदास ठाकुर का नियम क्या था, जब तक मैं संख्या पूरी नहीं करूंगा तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। और प्रभुपाद ने भी कुछ ऐसा कहा कि प्रभुपाद ने कहा कि जब तक मेरी 16 माला पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं ना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा। इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब यही, कई बार हमारे जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं, पूर्व जन्म से आए हुए प्रारब्ध हैं, या पूर्व जन्म से आए हुए अनर्थ हैं जो पाप कर्मों के कारण है या पुण्य कर्मों के कारण है, ये संस्कार जिनका प्रभाव मन में बहुत गहराई से पड़ा होता है, जिसका प्रभाव मन में बहुत गहराई से उतरा होता है, उस कारण से भी हम लोग ठीक से भजन नहीं कर पाते। ये शाम तो अंतकतम पापाम जनानाम पुण्य कर्मणा सद्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम धृढ़व्रता, भगवान गीता में कह रहे हैं। जिसके समस्त प्रकार के पाप कर चुके हैं वही दृढ़तापूर्वक भजन कर सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि दृढ़तापूर्वक भजन कैसे हम लोग कर पाएंगे जब हमारे संपूर्ण रूपे पाप कट चुके होंगे। इसलिए जो 4 नियम जो दिए जाते हैं हमारे गुरु के द्वारा या वैष्णों के द्वारा कहा जाता है दीक्षा के समय कि आप ये चार नियमों का पालन बड़ी शक्ति से करिए। इसको पालन करने से क्या होगा, हमारे अंदर जो दृढ़ता है वो पड़ेगी। हरिनाम जो है वो सभी प्रकार के पापों को काटता है, लेकिन नए पापों के लिए फिर हमें लाइसेंस नहीं देता ये हरिनाम। वो फिर अपराध लग जाता है नाम के बल पर पाप करना, और जितना हम नाम के बल पर पाप करते रहेंगे उतना हमारा डिटर्मिनेशन कमजोर होता जाएगा, उतना हमारा मन भी भजन में कम लगेगा। क्योंकि हम लोग हाथी स्नान कर रहे हैं, हाथी स्नान करता है मिट्टी डाल देता है, फिर हम बोलते हैं कि क्या कारण है भक्ति में आगे नहीं बढ़ने। तो ये सबसे पहले जैसे हमने बताया प्रभुपाद, या प्रभुपाद एक स्टेटमेंट दिया है, इफ यू कैन नॉट चैंट, इफ यू कैन नॉट फिनिश 16 राउंड्स देन यू मस्ट नॉट स्लीप ऑन दैट डे एंड यू मस्ट नॉट ईट। व्हाई डोंट यू फॉरगेट टू ईट। जैसे हम खाना नहीं भूलते हैं, कोई नहीं कहता कि आप खाओ, वो कहता है खुद ही हम खाते हैं ना। व्हाई डू यू फॉरगेट चैंटिंग हरे कृष्णा, दिस इज नेग्लिजेंस, अपराध, ऑफेंस। Rather you should forget your sleeping and eating and finish 16 rounds. This is called determination. और इस प्रकार गुरु गौरांग और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, महामंत्र का जप बड़े ध्यानपूर्वक करना चाहिए और संख्या को पूरी करनी चाहिए। हरिदास ठाकुर के प्रसंग में जो कथा सुनाई गई थी हिसोलीनाथ लोकनाथ महाराज के द्वारा, और फिर हमने उसके ऊपर ड्रामा भी किया था, उसमें एक जगह पर जहाँ पर हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि मेरी बीमारी ये है कि मेरी संख्या पूरी नहीं हो रही है, तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हमने 16 माला कम से कम निर्धारित किया है भक्तों के लिए इस आंदोलन में, तो जो भक्त इस 16 माला को पूरा नहीं कर पाते हैं वो रुग्ण अवस्था में, डिजीज कंडीशन में है स्पिरिचुअल लाइफ। तो इस वजह से ये राउंड्स जो पूरा करना बहुत जरूरी है। और कई बार हम देखते हैं कि हम लोग उसको दूसरे दिन में हम लोग टाल देते हैं, हम कल कर लेंगे, आज माला नहीं हुई कल कर लेंगे, और ऐसा करते करते ये रेगुलर आदत बन जाती है, और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे राउंड्स कम होने लग जाते हैं। वो बहुत एक्सट्रीम केसेस में ये प्रोविजन है कि संख्या पूरी नहीं हो पाया, आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, टाइफाइड हो गया आपको, या बिस्तर से उठ ही नहीं पाया, आवाज़ ही बंद हो गई, होश बेहोश हो गया आप कहीं, या कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया तो आपातकालीन अवस्था में, या रात को बहुत लेट आए कहीं दूर से सफ़र करके संख्या पूरी नहीं कर पाए, मतलब एक्सेप्शनल केसेस में तब जाके बोला गया अगले दिन आप पूरा कर सकते। लेकिन उसको रेगुलर हैबिट बना लेंगे तो धीरे धीरे हमारी चैंटिंग ही बंद हो जाएगी, फिर हैबिचुएटेड नहीं होना चाहिए इसके लिए। तो विश्वनाथ चक्री ठाकुर ने भी ये माधुरी कादंबनी में बताया है कि हमें उतनी संख्या निर्धारित करनी चाहिए कि जितना हम लोग संख्या को पूरा कर सकें। जो समर्पित भक्त हैं दीक्षा के लिए खड़े हैं, या दीक्षा जिन्होंने ले लिया है, उनके लिए तो 16 माला निश्चित रूप से उनको कम से कम करना ही करना है। लेकिन जो अभी पहली बार आए हैं, कुछ समय से ही आ रहे हैं, तो उनको भी संख्या निर्धारित करके चलना चाहिए। जैसे नए भक्त लोग आते हैं तो उनको तो हम नहीं कहते 16 माला करो, तो 4 माला करें, 5 में 6 माला करें, वो संख्या निर्धारित होनी चाहिए। तो इस प्रकार धीरे धीरे फिर वो लोग भी आगे बढ़ पाए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे यहाँ पर लिखा है, वन डे 16 राउंड, वन डे 8, वन डे 64, वन डे 10 एंड वन डे नन। इसको कहते हैं अनर्थ को नियमाक्षमा। नियमाक्षमा का मतलब यही होता है कि वो भक्त क्या करता है, विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं कि वो अलग अलग प्रकार के वोस लेता है, व्रत शपथ लेता है कि मैं एकादश के दिन ये करूँगा, ये व्रत रखूँगा, निर्जल करूँगा, 64 माला करूँगा, या फिर रोज मैं 32 माला करूँगा, दो दिन करता है, तीन दिन करता है, चौथे दिन हो नहीं पाता है, नियम टूट जाते हैं। और एक इसी तरह का एक और अर्थ बताया है, विशेष संग्रह। विशेष संग्रह में क्या होता है, विशेष संग्रह में इंद्र तृप्ति का परित्याग नहीं कर पाता, वो बोलता है कि आज ठीक है आपसे मैं 4 नियम का पालन करूंगा, सख्ती से करूंगा, लेकिन कभी फिर क्या होता है, एक नियम टूट जाते हैं, कई बार 2 टूट जाते हैं, तो उसको कहते हैं विशेष संग्रह। और नियमाक्षमा में क्या है, जो साधन भक्ति से संबंधित है, अलग अलग जो वोस लेते, एकादशी का व्रत है, जन्माष्टमी का व्रत है, उपवास रखना इत्यादि। तो कहने का अर्थ ये है हमारा कि हम उतना ही हम लोग अपनाएं जीवन में इन नियमों का जितना हम लोग इसको रेगुलरली फॉलो कर सके, स्टडी हो सके जिसमें। और एक बार एक वोस लेके हम स्टडी हो जाए फिर हम अगले स्टेप में जा सकते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हमें किसी ना किसी के मार्गदर्शन में जरूर रहना चाहिए, क्योंकि ये संख्या निर्धारित करना, जैसे 16 माला अगर जब कम से कम करना, ये तो प्रभुपाद ने बताया है और दीक्षा के समय गुरु भी हमें बताते हैं। लेकिन साथ में अगर आप संख्या बढ़ाना चाहते हैं, आप गुरु महाराज से उसके लिए आगे लेने पड़ती है। जैसे आप बोले कि मैं 25 माला करना चाहता हूँ, मैं आपने विचार कर लिया, लेकिन वो गुरु के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। हमेशा जब करने के लिए आपको आप अनुमति की आवश्यकता नहीं है, वो तो महाप्रभु ने आदेश दिया हुआ है, कीर्तनीय सदा हरि। जैसे आप यहाँ से अपने घर गए, रास्ते में आपको लगेगा ट्रैफिक में एक घंटा लग जाएगा, तो या तो आप कीर्तन सुनते हुए जाते हैं या आप चैंटिंग करते हुए जाते हैं। खाली समय बैठे हुए हैं, आधे घंटे का समय माला कर लिए, तो इस तरह से तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो संख्या निर्धारित अगर करना है, फिक्स करना है कि मैं रोज 25 माला करूंगा या रोज 35 माला करूंगा, उसके लिए गुरु से अनुमति लेना आवश्यक है, वो अपने आप में हम फिक्स नहीं कर सकते। तो ये बता रहे हैं भक्तिनो ठाकुर भक्त्यालोक में कि जब हम पूर्ववर्ती आचार्यों और वैष्णव के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं, उनकी कथा को सुनते हैं, तो हमारा डिटर्मिनेशन बढ़ता है। ये भी एक तरीका है। प्रभुपाद जी की भी जीवनी प्रभुपाद लीलामृत पढ़िए, कितना उत्साह बढ़ेगा हमारा, कितना संघर्ष किया प्रभुपाद ने। यहाँ से प्रभुपाद अकेले गए 70 साल की उम्र में, 3 हार्ट अटैक्स हुए, लेकिन उन्होंने अभ्यास नहीं छोड़ा अपना, यानी कि अपनी साधना को करते रहे, दिखाया प्रभुपाद ने, कथा भी किया, जन्माष्टमी उन्होंने जहाज में भी जन्माष्टमी बनाई, राधाष्टमी बनाई, और प्रत्येक दिन वो कृष्ण कथा करते थे जहाज में भी, ग्रंथ लिख रहे थे रोज। तीसरी बार भी हार्ट अटैक हुआ, जब कोई बसता नहीं तीसरी हार्ट अटैक के बाद, फिर भी प्रभुपाद जो है आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे, है कि नहीं। किसी भी परिस्थिति में श्रवण कीर्तन का परित्याग नहीं किया प्रभुपाद ने। तो इससे क्या होगा, हमें उत्साह मिलेगा जब हम प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र को पढ़ेंगे। इसलिए प्रत्येक भक्त को चाहिए कि जब कोई शुरू में भी नए भक्त लोग आते हैं, या अगर हम भी हैं, जैसे हमें प्रयास करना चाहिए कि प्रभुपाद लीलामृत जरूर पढ़े, इससे बहुत लाभ मिलता है। और पूर्ववर्ती आचार्य लोग षट गोस्वामी का जीवन चरित्र के बारे में सबको पता होना चाहिए। रूप गोस्वामी का जीवन चरित्र, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इनका जीवन चरित्र, इन्होंने कैसे कैसे जीवन बिताया। संख्या पूर्वक नाम गाण नति भी काला वसानी कृतो निद्राहार विहार कादि विजितो चात्यंत दीनो चयो। तो ये लोग क्या करते थे, पेड़ के नीचे रहते थे और मुश्किल से 1.5 घंटा विश्राम करते थे, 22.5 घंटे भजन करते थे, उसमें ग्रंथों की रचना भी करते थे, महामंत्र का जप भी करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी 22.5 घंटे भजन करते थे राधा कुंड में, 45 साल उन्होंने भजन किया वहाँ पर। तो इनके जीवन चरित्र को पढ़ेंगे, उनके वैराग के बारे में सुनेंगे और उनका आकर्षण कितना था महाप्रभु के चरणों में, ये जब सुनेंगे हमें प्रेरणा मिलेगी। रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन चरित्र आप पढ़िए चेतन चरितामृत में, अंतलीला में, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। महाप्रभु से कैसे उनको आदेश मिल रहा है कि नहीं। तो ये सब पढ़ने से क्या होगा, हरिदास ठाकुर के बारे में जैसे हमने सुना था कैसे एकांत में गुफा में बैठ के वो जप कर रहे थे, माया देवी, साक्षात माया देवी आए उनकी परीक्षा लेने के लिए, लगातार 3 दिन माया देवी फिर हार गई। उन्होंने कहा कि मैं बहिरंगा शक्ति हूँ, लेकिन मैं खुद ही हार गई, अब आप मुझे अपना शिष्य बनाइए। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, स्वयं माया देवी कह रहे हैं। तो इससे क्या है कि हमारे अंदर जो है श्रद्धा बढ़ती है। श्रद्धा बढ़ाने का तरीका है कि उन भक्तों के बारे में सुनना जिनकी श्रद्धा अटूट श्रद्धा है, जिनके पास कम से कम मध्यम स्तर की श्रद्धा है। और उत्तम वैष्णव के बारे में सुनेंगे तो बहुत श्रद्धा बढ़ेगी, जैसे हमारे पूर्ववर्ती आचार्य लोग हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर नवद्वीप में थे, जहाँ पर उन्होंने भजन कुटीर में भजन किया लगभग 10 साल, प्रत्येक दिन 192 वाला करते थे और हर महीने लगभग 1 करोड़ नाम लेते थे। ऐसे लगभग उन्होंने 9 साल किया, 9 या 10 साल, 1908 से 1918 तक। और जो उनका व्रत था उन्होंने पूरा किया, 100 करोड़ नाम का, 1 बिलियन नेम, है ना। तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कैसे करते थे बारिश के दिनों में भी, जैसे अभी बारिश हो रही है, क्योंकि उन्होंने व्रत लिया था तो झोपड़ी में जहाँ बैठते थे वो तो छतरी रखते थे, क्योंकि बारिश इतनी होती थी ऊपर से पानी टपकता था, एक हाथ में छतरी और एक हाथ में माला, लेकिन जप नहीं छोड़ते थे। तो ये हमारे आचार्य लोग हैं, इनके बारे में सुनना चाहिए। तो हम वो तो नकल नहीं कर सकते, हम भक्ति सिद्धांत ठाकुर तो नहीं बन सकते, या हरिदास ठाकुर नहीं बन सकते हम, कि मायादेवी के सामने बैठ के हम जप करेंगे। लेकिन हम लोग कुछ अंश मात्र में प्रेरणा लेके कुछ तो कर पाएंगे। हरिदास ठाकुर नहीं तो हरिदास तो बन जाए, या उनके दास आना दास तो बन जाए। तो ये सब प्रेरणा हम लोग ले सकते हैं आचार्यों से, प्रभुपाद से, पूर्ववर्ती आचार्यों से। तो फिर उससे क्या है कि बहुत लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। कैसी कैसे कठिन परिस्थितियों में इन आचार्यों ने, गोस्वामियों ने भजन किया। आप जानते हैं वृंदावन में कितना भयानक वातावरण था उस समय, जब सबसे पहले लोकनाथ गोस्वामी गए थे, भूगर्भ गोस्वामी गए थे, चारों तरफ जंगल था और वहाँ पर कोई लाइट तो थी नहीं, कोई गेस्ट हाउस नहीं था, कोई दुकानें नहीं थी, लोग नहीं रहते थे वृंदावन में, अधिकांश लोग मथुरा में रहते थे, कोई लोग नहीं रहते थे। तो ये लोग पेड़ के नीचे रहते थे, लकड़ी जलाकर उससे रोशनी होती, और ये जो गोस्वामी लोग जिन्होंने ग्रंथों की रचना की वो रात को बैठ के भी लिखते थे, लकड़ी जलाकर फिर लिखते थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी सब। तो ये साधारण लोग थोड़ा है। राधाकुंड इतना भयानक स्थान था उस समय, शेर की आवाज़ सुनते थे, सांप घूमते थे, जंगली जानवर, ऐसे वातावरण में बैठकर वो लोग अपना भजन करते थे। तो कौन कर पाएगा ऐसे भजन जिसका नाम है आकर्षण है। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को देखिए आप, उन्होंने कौन सा स्थान चुना, पब्लिक लैट्रिन चुना जप करने के लिए, कि यहाँ तो कोई मुझे डिस्टर्ब करने नहीं आएगा, और पूरी तरह से एब्जॉर्ब रहते थे वो चैंटिंग में। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के बारे में पीछे भी बताया था एक बार हमने, तो ये अनुराग था उनका, आकर्षण था हरिनाम में, दिन रात हरिनाम ले रहे। तो ऐसी रुचि हमारी जागृत हो, इस प्रकार हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो इससे हमारा डिटर्मिनेशन बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा। और प्रभुपाद फिर जब ने बताया कि जैसे उनको हार्ट अटैक हुआ तीसरी बार, प्रभुपाद वापस इंडिया आए और फिर से दोबारा राधा दामोदर मंदिर में आए, और कुछ दिनों के बाद फिर से अमेरिका चले गए स्वास्थ्य ठीक होने पर, और फिर उन्होंने 10 साल में पूरे विश्व में प्रचार कर दिया, है कि नहीं। तो ये देखिए कितना पावर होगा उनके पास। ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्रसंग आता है जिसमें भगवान विष्णु और गंगा जी के बीच में संवाद है, और गंगा जी कह रहे हैं कि कलयुग में तो लोग इतने पाप करेंगे तो मेरा क्या होगा, ये लोग पापी सारे आएंगे नहाएंगे मुझे अशुद्ध करेंगे, तो फिर मेरा उद्धार कैसे होगा कलयुग में। उनका एक समय आएगा कलयुग में प्रथम संध्या में, वो 10,000 साल का समय होगा, और उसमें कृष्ण भक्त होंगे, बहुत कृष्ण के बहुत भक्त होंगे, और पूरे पृथ्वी में कृष्ण के नामों का प्रचार होगा, हरि भक्त होंगे, और ऐसे शुद्ध भक्त पृथ्वी में विचरण करते हुए जब आएंगे स्नान करने के लिए, वो जब स्नान करेंगे गंगा जी में स्नान करेंगे तो वो गंगा जी को पवित्र करेंगे, वो शुद्ध भक्त जो हरि नाम ले रहे हैं वो गंगा जी को पवित्र करेंगे। तो आप चिंता मत करो, वो भक्त आएंगे स्नान करने के लिए, और मेरा मंत्र उपासक आएगा, भगवान बोल रहे हैं उसमें, एक मेरा मंत्र उपासक आएगा जो इसका प्रचार, हरि नाम का प्रचार पूरे विश्व में करेगा, पृथ्वी में करेगा। तो मंत्र उपासक बोला है, तो मंत्र उपासक प्रभुपाद मंत्र उपासक। तो इस तरह से शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों का अध्ययन इसलिए जरूरी है, इन गोस्वामियों का जीवन चरित्र, पूर्ववर्ती आचार्यों का जीवन चरित्र जब इनको पढ़ेंगे तो बहुत उत्साह बढ़ता है हमारा। फिर हम लोगों को लगता है कहीं तो किसी ना किसी तरह से हमें इनकी तरह सेवा करनी चाहिए, जैसे हमने नम्रता अभी पूछ रहे थे कोई भक्त की नम्रता कैसे लाएं अपने जीवन में, तो ये वैष्णव के जीवन चरित्र को पढ़ें कैसे नम्रता थी इनके अंदर। हरदास ठाकुर को 22 बाजारों में कोड़ों से पीटा गया, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि मैं तो हरिनाम नहीं छोड़ूंगा। सहनशीलता देखिए उनकी, जितनी अधिक सहनशीलता होगी उतनी अधिक नम्रता होगी, जितनी कम सहनशीलता है उतनी कम नम्रता है। ये मापदंड है प्योरिटी को टेस्ट करने का, अपनी प्योरिटी को टेस्ट करने का मापदंड ये है कि कितना टॉलरेंस है, और जितना टॉलरेंस है उतनी ही ह्यूमिलिटी रहेगी, और जितना टॉलरेंस और ह्यूमिलिटी है उतनी प्योरिटी है। और टॉलरेंस क्या है कि क्या सहन करना है हमें, अपने ही मन की समस्याओं को सहन करना है, कि सबसे बड़ी समस्या तो हम खुद हैं, है कि नहीं। तो अपने आप को सहन करना ये बहुत बड़ी बात है, तो ये बहुत जरूरी है। अगर माया को सहन करेंगे तो अंतिम समय में माया फिर माया का ही स्मरण कराएगी, लेकिन अगर हम भक्तों के समाज में रहकर, अगर कुछ भक्त इतने परिपक्व नहीं हैं, कनिष्ठ अवस्था में हैं, कुछ गलतियां कर बैठते हैं, उनमें कुछ दोष हैं, अगर उन भक्तों को हम सहन करते हैं पूरे जीवन भर, तो जीवन के अंतकाल में निश्चित रूप से यही भक्त आएंगे और हमारे सामने आकर क्या करेंगे, हरि नाम लेंगे, हमें गंगा जी का जल देंगे, राधा कुंड का जल देंगे, तुलसी दल देंगे, और बैठकर चैंटिंग करेंगे, हरि नाम लेंगे, तो ये लाभ होगा। तो सहन तो करना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, तत्तेनुकंपान सुषमिक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिस जो जीवन भर सहन करते हुए भक्ति में लगा रहता है और किसी भी परिस्थिति में भक्ति का परित्याग नहीं करता जीवन के अंतकाल तक, तो वो फिर क्या है, वो फिर मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। जीवे तो ये मुक्ति पदे सदाए भाव, वो फिर मुक्ति का अधिकारी बन जाता है, निश्चित रूप से वो भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जीवन के अंतकाल तक करना होगा। तो जीवन के अंतकाल तक हमें सहन करना पड़ेगा। कोई पूछ सकता है कि कब तक हम सहन करें, कई भक्त तो पूछते कब तक हम सहन करें इनकी बातों को, है ना, कब तक हम इनकी निंदा सुनते रहें अपने बारे में। कई बार होता है कोई गलती नहीं होगी, लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, आपने कुछ किया नहीं होगा, किसी के बुरे बारे में बुरा नहीं सोचा होगा, लोग आपके बारे में बुरा सोच रहे होंगे। तो भगवान हर तरीके से परीक्षा लेते हैं भक्तों की, हमें शुद्ध करने के लिए। कृष्ण अपने भक्तों की सुरक्षा पहले दिन से शुरू कर देते हैं, जिस दिन से हम लोग गुरु का आश्रय लेते हैं उसी दिन से परीक्षा शुरू हो जाती है हमारी, और उसी दिन से कृष्ण हमारी रक्षा भी करते हैं। और जो भी परीक्षा होती है कृष्ण के द्वारा ली जाती है, वो हमारे उद्धार के लिए होता है, हमारी भलाई के लिए होता है। और ऐसी परीक्षा में अगर हम सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे भक्ति में। परीक्षा से गुजरना बहुत जरूरी है, तो इसलिए भौतिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन, परीक्षा में भाग तो लेना पड़ेगा। जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया वो आगे बढ़ गए, जो परीक्षा में नहीं भाग लिए बोले इस बार मैं एग्जाम नहीं दूंगा, वो पीछे रहे, या पढ़े नहीं तो छुट्टी हो गई। आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसे ही होता है। तो गुरु भगवान सब परीक्षा लेते हैं, तो उस परीक्षा में हमें शामिल होना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। भीष्म पितामह के लिए देखिए कितनी बड़ी परीक्षा थी, बाणों के शैया में लेटे थे कि नहीं, और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आप शिक्षा दीजिए। और जब वो शिक्षा दे रहे थे तो द्रौपदी कहते हैं कि जब भरी सभा में मेरा अपमान हो रहा था तब तो आप कुछ बोले नहीं, अब आप शिक्षा दे रहे हैं। बेचारे वो बाणों के शैया में लेटे हैं फिर भी उनको सुनना पड़ रहा है। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि उस समय मैं कौरवों का अन्न खा रहा था, वो सब निकल गया, आप देखो ये देख रहे हो खून बह रहा है, ये सब निकल गया, इसलिए अब दोबारा मेरे अंदर शक्ति आ गई है बोलने की। तो जब तक पवित्रता नहीं होगी हमारे अंदर बोलने की शक्ति भी नहीं रहेगी, हम प्रचार नहीं कर सकते, हम डरेंगे माया से, माया का सामना नहीं कर पाएंगे, बाहर जाएंगे प्रचार के लिए हम कुछ बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन में क्या है, बहुत कलमश है। तो प्रचार के लिए पवित्रता की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए वैष्णव समाज में रहते हुए जितना हम सहनशील और नम्र बनेंगे और साधना भक्ति के अंगों का ठीक ठीक पालन करेंगे, इससे पवित्रता हमारी बढ़ेगी और इस पवित्रता को लेकर हम जब प्रचार में जाएंगे, ऐसा प्रचार जो है सफल होगा। प्रचार सफल होने का मतलब ये नहीं है कि संख्या बढ़ रही है आपकी, भक्तों की संख्या बढ़ रही है या अनुयायी आपके ज्यादा हो रहे हैं। प्रचार में सफलता का मतलब यह है कि हम स्वयं कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं, ऐसे प्रचार के माध्यम से हमारी कृष्ण भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसलिए इन परीक्षाओं से गुजरना बहुत जरूरी है और जितने आप आगे बढ़ेंगे भक्ति में उतनी ज्यादा परीक्षा है। इसलिए प्रहलाद महाराज को देखिए आप, पांडवों को देखिए आप, द्रौपदी को देखिए, या जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं कितने घोर परीक्षा से गुजरे हैं और इस सब परीक्षा में सफल हुए हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इनका प्रेम था कृष्ण से, उनको परीक्षा परीक्षा नहीं लग रही थी। उनको तो जंगल में कृष्ण वहां जंगल में मिलने आ जाते थे पांडवों को, तो जब भी वो दुविधा में होते कृष्ण को पुकारते कृष्ण आ जाते थे, क्योंकि उनका विश्वास उनकी श्रद्धा भगवान में पूरी तरह से प्रेम के कारण। तो श्रद्धा को बढ़ाने का ही कार्यक्रम है ये पूरा महामंत्र का जप क्यों कर रहे हैं, हमारी श्रद्धा बढ़े भगवान के प्रति। श्रद्धा को प्रेम के स्तर तक पहुंचाना है और इसको पहुंचाने के लिए ही हम लोग हरिनाम का सहारा ले रहे हैं, आश्रय ले रहे हैं, हरिनाम का जप हम इसलिए कर रहे हैं। ये श्रद्धा जो कोमल श्रद्धा है, जो पहले दिन आते हैं प्रारंभिक अवस्था में कोमल श्रद्धा लेके आते, हम कली के समान होते हैं, कोई भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है, कोई बोल सकता है आपको कि आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं यहां पर, कहां फंस गए आप, क्योंकि श्रद्धा आपकी कोमल है, आप कंफ्यूज हो जाओ। तो इसलिए उस श्रद्धा को बढ़ाना है और ऐसी अवस्था से आगे बढ़ना है। कोमल श्रद्धा लेकर ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहिए, कनिष्ठ अवस्था में ज्यादा समय तक रहना बहुत खतरनाक स्थिति है, क्योंकि अधिकांश जो भक्त लोग गिरते हैं या मार्ग से भटकते हैं वो कनिष्ठ अवस्था से भटकते हैं। तो कनिष्ठ अधिकारी बने रहना ये अच्छा नहीं है, तो इसलिए बहुत जरूरी है इन बातों को समझना। तो यहाँ पर प्रभुपाद के बारे में बता रहे हैं कि प्रभुपाद बता रहे हैं, व्हेन अ हाउस होल्डर आई वुड चैंट फोर राउंड्स बिफोर ईच मील एंड फोर राउंड्स बिफोर रिटायरिंग इन द इवनिंग, इन दिस वे 16 राउंड्स कुड बी चैंटेड विदाउट डिफिकल्टी। ही लाफ्ड एंड सेड, इफ यू डोंट टेक प्रसादम बिफोर चैंटिंग इन फोर राउंड्स देन यू विल बी श्योर टू गेट देम चैंटेड। एक बार प्रसाद ले लिया तो जब करना मुश्किल है। प्रभुपाद यहाँ तक बोला कि 10 बजे तक हो जाना चाहिए हमारा जब, 10 बजे के बाद जब बहुत मुश्किल होता है, वैसे तो 7 बजे तक जब होना चाहिए, लेकिन जो बाहर रहते हैं उनके लिए भी प्रयास करना चाहिए कि 10 बजे तक हो जाए, और किसी कारण नहीं हो पाता है, आज की परिस्थिति ऐसी है, तो जब वापस आते हैं तो वापस आकर भी जो संख्या बाकी पूरी करनी है उसको बहुत ध्यान से हमें पूरा करना चाहिए। इन बातों का बड़ा ध्यान रखना है हमें। तो प्रभुपाद कह रहे हैं लेकिन हरिनाम हम कभी भी ले सकते हैं, किसी भी अवस्था में ले सकते हैं। इन द इवनिंग इफ आई गेट टायर्ड आई वॉक एंड चैंट, इफ यू आर टायर्ड देन वॉक एंड चैंट लाइक आई डू, समटाइम्स इफ आई एम टायर्ड आई पेस बैक एंड फोर्थ इन द रूम, सिमिलरली इन वन रूम यू कैन डू एवरीथिंग, इफ यू आर टायर्ड यू कैन स्टैंड अप एंड चैंट लाइक आई डू। तो ये हमने बताया कि कोई गोल्डन रूल नहीं है कि आपको बैठना ही है, बैठ के जब करें तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन का पावर बढ़ता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, शुरू में नींद आती है बैठ के जब करने में, तो खड़े होकर कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, चैंटिंग करना है। आसन और मुद्रा बनाना ही सेकेंडरी है, वो तो जो योगासन करते हैं वगैरह वगैरह उनके लिए है, हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, चैंटिंग करना। और बैठ कर अगर नींद आ रही तो खड़े हो जाए, और खड़े होकर भी नींद आ रही तो चलो, और चलकर भी नींद आ रही है तो फिर जाके रेस्ट कर लो, अच्छा फिर तो बेकार है, फिर जब ही नहीं हो रहा आपसे, उससे अच्छा कि आधा घंटा रेस्ट कर लो और फिर जब करो ढंग से। लेकिन जब के समय अगर हम सो रहे हैं तो उसका कारण ढूंढना चाहिए, कारण कई होते हैं, रात को देर से सोना और ठीक से पछता नहीं रात को, ये बड़ी समस्या है। और मान लीजिए आप लेट लेते भी हैं 8-8:30 बजे, तो कम से कम आधा पौना घंटा कम से कम वॉक करना चाहिए, ब्रिस्क वॉकिंग फास्ट, उससे डाइजेशन होगा। और कुछ हम लोग योगासन सीखें जिससे डाइजेशन स्ट्रांग होता है, तो इससे क्या है, बहुत लाभ मिलता है। आगे आएगा, ये सब बातें आएंगी कि कैसे हम लोग बैलेंस करके चल सकते हैं। हेल्थ को ठीक बनाए रखना बहुत जरूरी है साधना करने के लिए, हमें उस लिबरेटेड प्लेटफॉर्म में नहीं है कि जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी हर 2 दिन में एक बार छाछ पीते थे केवल 200 ग्राम और कभी कभी तो वो भी नहीं लेते थे वो, और वो भी डोने में, है कि नहीं? तो रघुनाथ वो भी नमक वाला छाछ, तो रघुनाथ दास गोस्वामी की नकल तो नहीं कर सकते हम। नियमित आहार हो और सही समय पर सोएं तो बहुत लाभ मिलता है, फिर जब भी अच्छा होगा। और भी कई चीज़ें हैं इनका ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ पे एक बात बहुत अच्छा लिखा, हरिभक्ति लास में लिखा है कि हमेशा जप करना, कीर्तनीय सदा रे। हमेशा कौन जप कर पाता है? द होली नेम ऑफ हरि कैन बी ऑलवेज प्रेजेंट द माउथ ओनली ऑफ वन हु हैज परफेक्टली वर्शिप्ड वासुदेव फॉर हंड्रेड्स ऑफ प्रीवियस बर्थ्स। जिसने 100 जन्मों तक भगवान की पूजा की है, भगवान वासुदेव की पूजा की है 100 जन्मों तक, वही हमेशा हरिनाम ले सकता है। या जो हरिनाम हमेशा हरिनाम ले रहा है, इसका मतलब क्या है? वो 100 जन्मों तक उसने कृष्ण भक्ति की है, ये इसका दूसरा तात्पर्य। और भगवद्गीता में भगवान कह रहे हैं सततम कीर्तयन तो माम यतन तृढ़ता नमन संतश्च माम भक्त नित्य युक्त उपासते, ऑलवेज चैंटिंग माई ग्लोरीज, सततम हमेशा ये ढृढ़व्रत होकर मेरा कीर्तन कर पाते हैं। कौन? ये महात्मा लोग। तो प्रभुपाद से पूछा कि आपको देखकर तो ऐसा लगता नहीं, आप तो बहुत कुछ कर रहे हैं, आप मैनेजमेंट में लगे हैं, कंस्ट्रक्शन का ध्यान दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में घूम रहे हैं आप कॉन्ट्रैक्टर से मिल रहे हैं, इंडस्ट्रियल बिजनेस वालों से मिल रहे हैं, बिजनेसमैन से मिल रहे हैं, और आप कई प्रकार के एक्टिविटीज में बिजी लगते हैं, आपको तो हमेशा कीर्तन करते हुए देखा नहीं हमने। तो PL सेठी बम्बई में अभी भी हैं, काफ़ी उम्र हो गई उनकी, तो उनको प्रभुपाद ने कहा आप पीठ में कान लगा के देखो, तो प्रभुपाद की पीठ में कान लगा के सुना तो कीर्तन सुनाई दिया। ये असली घटना है। इसी तरह से प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, तो उनको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टर आए, स्टेटोस्कोप से टेस्ट किया, उनके हार्ट को चेक किया, तो डब डब करता ना हार्ट, तो डब डब की आवाज़ आती है स्टेटोस्कोप में, कान में लगाएंगे तो, लेकिन डॉक्टर को हरे कृष्ण महामंत्र सुनाया दिया कृष्णदास बाबा जी महाराज। हाँ, प्रभुपाद उनको कहते थे परमहंस हैं करके। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वास्तव में ये देखिए गीता में जो भी कहा है भगवान ने, शास्त्र की वाणी को यथारूप लेना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं ये भगवान कह तो रहे हैं लेकिन इसका अर्थ कुछ और है, जैसे कहा है वैसे ही अर्थ लेना है। योगक्षेम वहां ही हम जैसे भगवान कहते हैं, मैं रक्षा करता हूं, कोई कमी है मैं पूरा करता हूं, तो भगवान स्वयं करते हैं वो, ये नहीं किसी को भेजते हैं। जहां भगवान कहते हैं मैं करता हूं तो मैं ही, भगवान कहते हैं हाँ मैं ही करता हूं। तो इस प्रकार हमें ध्यान रखना चाहिए। और कलयुग में कोई पूछेगा कृष्ण हमारी रक्षा कैसे कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप में हरिनाम के माध्यम से। और देश काल पात्र कोई है नहीं, कोई कठोर नियम काल है नहीं, किसी भी परिस्थिति में हरिनाम लिया जा सकता है। खाएते सोएते यथा तथा नाम लोए, प्रारंभिक अवस्था में ऐसे ही है कि आप किसी भी अवस्था में रहकर जप कर लीजिए, लेकिन अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो जो गुरु ने जो आज्ञा दी है, संख्या की जो आज्ञा दी है, वो उसमें क्वालिटी होना चाहिए। बाकी आप जप करते रहिए पूरे दिन, कहीं भी हरिनाम लेते रहिए, गाड़ी में जा रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं चैंटिंग करते रहिए, आप एक हफ्ता ट्राई करके देखिए, आप देखिए कितना डिफरेंस आएगा, बहुत डिफरेंस आता है। आपके टंग में कंट्रोल आएगा, जो हमारी आदत है बोलने की या किसी की बुराई करने की, वो सब रुक जाएगी। इतनी क्वालिटीज डेवलप होती हैं चैंटिंग से, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सेवाओं को छोड़ के केवल जप करते रहे बैठ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कई बार प्रारंभिक अवस्था में जो प्राकृत भक्त हैं उसको उल्टा ले लेते हैं, फिर उनके सेवा के लिए कहा जाता है तो फिर बोलते नहीं मैं जप कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। ये इसलिए बताया गया है कि जब हम लोग खाली हैं, कहीं यात्रा में जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, या लगता है कि अभी आधे घंटा फ्री बैठे हैं, कोई सेवा नहीं है, उस समय जप करिए। या ऑफिस आवर्स में भी लगता है कोई ब्रेक मिल गया आपको, कहीं जाने का मौका मिल गया, आप चैंटिंग कर लीजिए, बहुत फर्क पड़ेगा उससे, बहुत फर्क पड़ेगा। एक तो देखिए साधना को हमें याद रखना है, क्योंकि इसको मैकेनिकल नहीं बनाना चाहिए। आ जाते मैकेनिकल का मतलब क्या है? मैकेनिक का मतलब 4:30 से 9 बजे तक, उसके बाद मैं कृष्ण को नहीं जानता हूँ, मैं कृष्ण को याद करता हूँ केवल 4:30 से 9 बजे तक बस, या शाम को 7 से 9 बजे तक मंदिर में जो भक्त रहते हैं, या घर में जो आप रहते हैं, जो आपने स्टैंडर्ड बनाया है तो उस समय मैं याद रखता हूँ, बाकी दिन भर कोई मतलब नहीं है मुझसे, मेरा कृष्ण से कोई मतलब नहीं है। तो उसका अर्थ ये है, ये खतरा है, क्योंकि पूरे दिन में कुछ हो जाए तो। इसलिए बोला गया है कीर्तनीय सदा हरे। तो यहाँ बड़ा अच्छा होता है, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस वी शुड ट्राई टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र व्हाइल थिंकिंग फीलिंग विलिंग ब्रीदिंग हियरिंग सीइंग स्पीकिंग टचिंग टेस्टिंग वेकिंग पासिंग बेदिंग ड्रेसिंग वॉकिंग सिटिंग ड्राइविंग वर्किंग रिलैक्सिंग स्लीपिंग ड्रीमिंग एंड डाइंग। हर परिस्थिति में होता है। कितना अच्छा होता है, देखिए अब सुनिए, दोबारा सुनिए। व्हाइल थिंकिंग फीलिंग विलिंग ब्रीदिंग हियरिंग सीइंग स्पीकिंग टचिंग टेस्टिंग वेकिंग पासिंग बेदिंग ड्रेसिंग वॉकिंग सिटिंग ड्राइविंग वर्किंग रिलैक्सिंग स्लीपिंग ड्रीमिंग एंड डाइंग। जिसने पूरे दिन जो है कृष्ण को याद किया है, वही तो अगर रात को सपना देखेगा तभी कृष्ण याद आएंगे, तो कैसे कृष्ण याद आएंगे। और जिसने पूरे जीवन भर कृष्ण को याद किया है, वही तो जीवन के अंत काल में कृष्ण को याद कर पाएगा। यही तो अभ्यास है, अभ्यास से बहुत शक्ति है, अभ्यास से वैराग आता है। जैसे गीता भगवान में कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट इट इज पॉसिबल, लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस से डिटैचमेंट भी आता है, डेवलप होता है। अगर डिटैचमेंट डेवलप नहीं हो रहा है तो उसका मतलब भक्ति भी ठीक से नहीं हो रही हमारे। और डिटैचमेंट का मतलब क्या है कि मेटेरियल वर्ल्ड से अट्रैक्शन कम होना, मेटेरियल वर्ल्ड के प्रति अट्रैक्शन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, यह भी टेस्टिंग पॉइंट है हमारे लिए, यह भी परीक्षा है। तो इसलिए मैकेनिकल साधना से बचने का तरीका यह है, जैसे खाली समय हुआ कभी आप मंदिर चले गए, आप हैं और सामने श्री श्री राधा पार्थ सारथी हैं, बस और कोई नहीं है, या कुछ लोग खड़े हैं पीछे दर्शन के लिए, और आप राधा पार्थ सारथी के समक्ष अकेले प्रार्थना कर रहे हैं, और उनके सुंदर रूप को देखकर एक एक अंग को बड़े ध्यान से देख रहे हैं और भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं, घर की समस्या नहीं, अपने मन की समस्याएं, अपने अनर्थों के बारे में कृष्ण को बता रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं अलग से जाके। ये तरीका है मैकेनिकल साधना से ऊपर उठने का। और जबके अलावा भी अगर आपको लगता है, जैसे रविवार को आते हैं तो लगता है ठीक है आधा घंटा मैं आप डीटी के सामने बैठ के जप करूंगा, जब दर्शन खुल जाए, प्रसाद लेने के बाद थोड़ा समय खाली रहता है, संडे में भी थोड़ा आधा घंटा बैठ के डीटी के सामने बैठ के जप करूंगा, तो कोई नहीं होगा, तो कीर्तन चलता रहे, आपको जप भी चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हम एक उदाहरण दे रहे हैं आपको। तो इस प्रकार अलग से भी हमें समय निकालने का प्रयास करना चाहिए, बहुत लाभ मिलता है। हरे कृष्ण।
जैसे कोई शुद्ध नहीं है, कोई जैसे मोशन वगैरह गया है और उसके अब माया नहीं, वो तो वो जब कर सकते हैं
चैंटिंग तो हम कर सकते हैं किसी भी परिस्थिति में।
नहीं, जैसे व्यवस्था है नहाने की,
हाँ
है घर में नहाने
है, तो व्यवस्था है तो नहा लीजिए,
नहा कर करना चाहिए।
नहा के करने से लाभ ये होता है कि चेतना आपके सत्वगुण में रहती है, नहाने से रजोगुण शांत होता है।
जब हमें लेट कर करना चाहिए,
क्योंकि देखिए जितना आप सत्वगुण बढ़ाएंगे उतना वो साधना के लिए लाभकारी है, फेवरेबल है। जितना आप रजोगुण तमोगुण में रहेंगे उतना अनफेवरेबल है, प्रतिकूल रहेगा। जैसे कमरा साफ रखना, ठीक है, सफाई का ध्यान रखना, अपने कपड़े रोज धो के पहनना, साफ सुथरा, रोज नहाना कम से कम दो दफा, सफाई का ध्यान रखना, ऑल्टर है तो बहुत बिल्कुल साफ रखना, ऑफर जो कर रहे हैं सब कुछ बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल प्योरिटी जिसको कहते हैं, इंटरनल भी होनी चाहिए एक्सटर्नल भी होना चाहिए। तो इस एक्सटर्नल क्लीनिनेस का प्योरिटी का प्रभाव जो है हमारे चेतना पे पड़ता है। मान लो आप ऐसे कमरे बैठे जहाँ चारों तरफ तमोगुण है और चारों तरफ गंदगी है, बदबू आ रही है और सफाई नहीं हुई है, आप जब करके देखिए कुछ समय में नींद आने लगेगी। हम गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज नहीं है कि नहीं, ऐसी परिस्थिति में हम लोग नहीं जप कर सकते, उनकी नकल नहीं कर सकते, वो परमहंस हैं। तो वो तो इसलिए कर रहे थे कि कोई डिस्टर्ब ना करे उनको, क्योंकि लोग अधिकांश लोग जब आते थे उनके पास वो अपने स्वार्थ के लिए आते थे। जैसे एक व्यक्ति आया, व्यापारी था, तो बाबा जी महाराज ने कहा कि कृपा चाहिए मेरी, वो बार बार ये बोल रहा था आप कृपा करिए, आप कृपा कर दीजिए, आप कृपा कर दीजिए। बोलते मेरी कृपा तो यही है, ऐसा करो तुम सब कुछ छोड़ दो और तुम मेरे पास आके रहो मेरी तरह। वो उसी समय भाग गया वहां से। तो बाबा जी महाराज चाहते नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि ऐसे लोग आके डिस्टर्ब करें, क्योंकि वो लोग मेटेरियल डिमांड्स लेके आते थे कि मेरा बिजनेस बढ़ जाए या ये हो जाए वो हो जाए, तो ऐसे लोगों को अवॉइड करते थे। तो इसलिए जो है हमें ध्यान रखना चाहिए, सफाई का ध्यान रखना चाहिए। स्नान करने से बहुत लाभ मिलेगा और फिर हम उसके बाद चैंटिंग करेंगे, क्योंकि माला भी हमारी तुलसी की होती है, तो नहा धो के करें तो अच्छा है। वो बात अलग है, परिस्थिति आपकी दूसरी है, जहाँ स्नान करने की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ मंत्र स्नान करते हैं। स्नान भी कई प्रकार के होते हैं, और जल से स्नान करने की व्यवस्था नहीं है तो मंत्र से स्नान करना चाहिए। तो मंत्र स्नान के मंत्र क्या है, सबसे बड़े मंत्र तो हरे कृष्ण महामंत्र है, तो उसके अलावा भी जो मंत्र उपलब्ध हैं उसका उच्चारण करके आप मानसिक स्नान करके अपने को शुद्ध कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर स्नान करने की व्यवस्था नहीं है, पर वहाँ पर उपलब्धि नहीं है, मतलब अरेंजमेंट नहीं है।
प्रभु जी, जो जैसे शुरू में 16 माला करनी है तो हमें 16 माला अटेंटिवली करनी चाहिए, हम लेट कर जब कर सकते हैं या नहीं?
लेट के जैसे अगर बीमार हैं, पीठ में दर्द है बहुत ज़्यादा, तो उस समय ऐसा किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि लेट कर सोना जाए फिर। समस्या यही है ना, लेट से नींद आ जाती है हमें। जो जिस स्थान में सोते हैं वो शांत तमोगुण कहलाता है, जो उसी जगह लेटने से हमें नींद आ जाती है, क्योंकि वहाँ आदत है लेटने की सोने की, तो उस स्थान में अगर करेंगे तो निश्चित रूप से नींद ही आएगी आपको, कि उस स्थान में आपने उसी चीज़ का अभ्यास किया है। इसलिए तो स्थान का महत्व बताया आपने, हमने क्यों बताया शुरू में अधिष्ठानम, तो अब स्थान भी चुनते हैं, रोज एक ही स्थान चुनते हैं ना सोने का। ऐसा तो नहीं होता है कि नहीं आज मैं दूसरे कमरे में सोऊंगा, मैं ऊपर छत में सोऊंगा, मैं बालकनी में सोऊंगा, तो आप देखिए करके देखिए आपको नींद नहीं आएगी इतनी जल्दी। कई बार हमारा भी अनुभव होता है, हम कई बार जाते हैं यात्रा में, किसी गेस्ट हाउस में रहते हैं या धर्मशाला में रहते हैं, वह नींद नहीं आती कुछ देर तक, लेकिन आप अपने घर में देखो जिस स्थान में आप रोज सो रहे थे बस 5 मिनट नींद आ जाती। ऐसा क्यों होता है? ये स्थान का महत्व है। इसी तरह से भजन का जब स्थान चुनेंगे तो स्वाभाविक है कुछ समय के लिए बाद मन आपको यह एहसास दिलाने लगेगा कि हाँ इस स्थान में भजन होता है, मन समझ जाएगा, तो अपने आप भी वहां पर आप जप करने लग जाएंगे जैसे उस स्थान में बैठेंगे। ये है स्थान का महत्व। लेकिन स्थान बदलेंगे तो वो एकाग्रता वो कभी नहीं आएगी, असंभव है, मन भटकता रहेगा वहां। और कुछ मार्गदर्शन का मतलब होता है जो गुरु की सेवा में तत्पर है ऐसे भक्तों के मार्गदर्शन में होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। एक तो भजन में विज्ञ हो और दूसरा जो है अन्यों की निंदा से रहित हो। शुश्रूषया भजन विज्ञम अन्य निंदादि अन्यम ईप्सिता संगम लभ्या, रूप गोस्वामी कह रहे हैं। तो ऐसे भक्तों का संग करना पड़ेगा, ऐसे भक्तों के मार्गदर्शन में रहना पड़ेगा जिनका हृदय निंदा से रहित है और गुरु की सेवा में तत्पर है। जो गुरु की सेवा में तत्पर है ऐसे भक्तों का संग करने से हमारे अंदर भी तत्परता आएगी, क्योंकि जो गुरु की सेवा में तत्पर है वो शिष्य के पास गुरु के जैसे गुण हैं, और ऐसे भक्त का संग करने से हमारे अंदर भी भाई वही गुण आ जाएंगे, ये लाभ होता है। मार्गदर्शन का मतलब ये नहीं कि पास में बैठना, मार्गदर्शन का मतलब है आगे का पालन करना। शब्द भ्रम जिसको कहते हैं, जो आपको आज्ञा दी गई है उस आज्ञा का जब पालन करते हैं तो उस आज्ञा में और गुरु में फिर कोई भेद नहीं। जैसे मंत्र भी रिप्रेजेंटेटिव है गुरु का, जब जब हम ध्यान से मंत्र का जप करते हैं तो उसका मतलब सोचिए कि गुरु हमारे साथ में ही है, लेकिन आप गुरु के पास बैठे हैं लेकिन आप जप ही नहीं करते, क्या फायदा उसका? फिजिकल प्रॉक्सिमिटी का लाभ जरूर है लेकिन वही सब कुछ नहीं है। वाणी सेवा का महत्व है, इसलिए कई बार देखा गया जब गुरु या आचार्य शरीर छोड़ देते हैं, तिरुभाव हो जाता है, तो कई शिष्य भाग जाते हैं, होता कि नहीं? उनको लगता है कि आप बेकार है रहना, आप गुरु नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने केवल फिजिकल प्रेजेंस को ही समझा महत्व समझा, उसी के महत्व को समझा। उनकी वाणी का जो महत्व उसको नहीं समझ पाए वो शब्द भ्रम को। और वाणी का पालन करना जो है वो जीवन के अंतकाल तक चल सकता है। और वाणी की सेवा जो कर रहा है जीवन के अंतकाल तक, ऐसे शिष्य के साथ हमेशा गुरु हैं, और जन्म जन्मांतर तक ऐसे शिष्य के साथ गुरु हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है। मार्गदर्शन का मतलब ये है, प्रभुपाद भी मार्गदर्शन दे रहे हैं अपने किताबों के द्वारा। प्रभुपाद नहीं है व्यक्तिगत रूप से फिजिकली, लेकिन प्रभुपाद की वाणी है। तो प्रभुपाद की जब ग्रंथ पढ़ते हैं और ग्रंथों को पढ़ के उन शिक्षाओं को अपनाते हैं अपने जीवन में, तो प्रभुपाद हमारे साथ में। प्रभुपाद जैसे कहते हैं रूप गोस्वामी के कोई ग्रंथ पढ़ेगा इसको, नेक्टरल डिवोशन को, भक्ति रसाम संतों को, तो उसको रूप गोस्वामी का व्यक्तिगत संघ मिल रहा है। तो ऐसे हम लोग आचार्यों का संघ प्राप्त कर सकते हैं उनके ग्रंथों को पढ़ के, कहने का अर्थ है प्रभुपाद का संघ कर सकते हैं प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ के। इस तरह से रूप गोस्वामी का हमें लाभ मिल सकता है, संघ का लाभ मिल सकता है उनके ग्रंथ को पढ़ के, उनकी वाणी है उसमें, और वाणी आज तक है। तो इसलिए तो हम हमारे आचार्य बोलते हैं कि ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, और जो आज्ञा हमें मिली है उनके द्वारा उन आज्ञाओं का पालन करना, ये बहुत जरूरी है। रोज अगर संभव है आगे करना तो कर सकते हैं, लेकिन कई बार संभव नहीं भी होगा। घर में एक स्थान चुनना पड़ेगा आपको, बिल्कुल। स्थान के अलावा जो है अधिष्ठानम है, उसके बाद चेष्टाएं हैं, और उसके बाद फिर साक्षी हैं भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में, और हमारी इंद्रियां हैं, है कि नहीं। और उसके बाद फिर कौन है, उसका क्या अनुवाद बताइए। तो अधिष्ठानम का मतलब स्थान, और फिर चेष्टाएं, प्रयास करते हैं। जैसे आप सबने चेष्टा की यहाँ पे आने की, तभी ये कार्यक्रम संभव हो पा रहा है। अब अकेला अगर मैं बैठा होता तो ये कार्यक्रम नहीं होता फिर। तो इसलिए ये बताने के लिए भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपने को खुद को कर्ता ना समझें, और भी कारण है कर्म के, और उसके बाद परमात्मा की अनुमति, वो बहुत जरूरी है। और स्वयं कर्ता भी, आप स्वयं धुअर जिसको कहते हैं, और ये इंद्रियां, तो ये पांच है। तो ये पांच कर्म के कारण होते हैं, और ये आप भक्ति में भी लागू कर सकते हैं, क्योंकि जब तक परमात्मा की अनुमति ना हो तो फिर आप कैसे भजन करेंगे, है कि नहीं। तो घर में भी ऐसा स्थान होना चाहिए, इसलिए हर घर में क्या होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए अपना, छोटा सा ऑल्टर होना चाहिए, और वहाँ पर तुलसी हो और प्रभुपाद जी का कैसेट चलता रहे, और वहाँ बैठ के आप जब करें तो कभी स्टडीनेस आएगा नहीं। फिर आप पहले ये एसेस करिए कि सुबह आप कितनी माला कर सकते हैं, पहले आप ये एनालिसिस करके देख लिया अच्छे तरह से, क्योंकि आपके सिचुएशन को सबसे ज़्यादा आप ही परख सकते हैं, दूसरा तो नहीं परख सकता ना। आप जानते हैं कि सुबह सुबह आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, तो पहले तो उसका लिस्ट बनाइए आप, और उस लिस्ट बनाने के बाद आप देखिए कि किस एक्टिविटी में कितना टाइम लगता है, और आपके पास कितना टाइम बचा है चैंटिंग के लिए, तो उस टाइम में चैंटिंग ही करना है फिर। तो उतने राउंड्स आप करें, मान लीजिए आप सुबह केवल आठ माला कर पा रहे हैं, तो आठ माला जो है उसमें स्टैंडर्ड आठ माला का क्वालिटी होना चाहिए। तो खुद को पहले एसेस करना पड़ेगा आपको। देखिए इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मन्वेषण जिसको कहते हैं। और बाकी जो आठ माला है उसके लिए भी दिन में एक समय आप निर्धारित करिए कि शाम को इतने बजे से इतने बजे आने के बाद, या कहीं किसी स्थान में जाकर मैं जब करूँगा, जब मैं किसी से नहीं मिलूंगा, कोई मोबाइल फ़ोन से अटेंड नहीं करूँगा, कोई कॉल से अटेंड नहीं करूँगा, कोई क्लाइंट नहीं, कोई कस्टमर नहीं, है कि नहीं। मैं हूँ और केवल हरि नाम है बस, और कोई तीसरा व्यक्ति नहीं, तब ये हो पाएगा। देखिए जो हमारी साधना है आज, वही आगे चलकर साध्य बनने वाला है। जैसी हमारी साधना होगी वही आगे चलकर साध्य बनेगा। हम उम्मीद ना करें कि हम साधना कैसे भी कर लेंगे और अंतकाल में एकदम से प्रेम उमड़ पड़ेगा उसके लिए, ऐसा कभी नहीं होगा। कि जिस तरह का अभ्यास हमने किया है उसी तरह का हमें फल भी प्राप्त होगा। जिस तरह से आप सेचन करेंगे बीज का, पानी से, हवा से, है ना, और सूरज की रोशनी से सेचन करते हैं, उसी तरह से आपको फल मिलेगा। तो इस तरह से क्या है कि हमें बहुत ध्यान रखना है। आज का दिन जो है ये सोचिएगा हमारे लिए आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भक्त को यह सोचना चाहिए आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है मेरे लिए। जिसने आज को अच्छा बना लिया वो कल को अपने आप अच्छा बना रहा है। अंग्रेजी में कहावत है ना, पास्ट हैज शेप्ड द प्रेजेंट एंड दिस प्रेजेंट विल शेप द फ्यूचर। तो यानी कि प्रेजेंट इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं? तो इस प्रेजेंट को इंपॉर्टेंट बनाना बहुत जरूरी है। इस समय मेरे को क्या करना चाहिए जिससे मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूं, ये विचार हमेशा रखना चाहिए। और भक्तों का संग बहुत जरूरी है। भक्तों का संग जब छूट जाता है तब समस्याएं शुरू हो जाती है हमारी। भक्तों का संग मतलब भक्तों का संग, कोई भी भक्त हो, भले वो भक्त बाहर से आ रहे हों या मंदिर के भक्त हो, भक्त होने चाहिए। भक्तों का संग बहुत जरूरी है। आदान प्रदान होना जरूरी है भक्तों के बीच में, फिर गंभीरता आएगी। और जैसे हमने बताया कि उन भक्तों का संग जो गुरु की सेवा में तत्पर है, ऐसे भक्तों का संग सब नहीं कर पाते, सब करना नहीं चाहते, क्योंकि उनके साथ रहकर फिर सेवा करनी पड़ती है। वो प्रजल्पा करेंगे नहीं, वो या तो ग्रंथ पढ़ेंगे या कृष्ण कथाएं करेंगे केवल, हमें प्रजल्पा में अभी रुचि है तो इसलिए उनका संग नहीं करना चाहते। ये समस्या है। जैसे आप देखिए ना, स्कूल में भी, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाइए, वहाँ पे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कुछ सीरियस होते हैं, कुछ ऐसे ही टाइम पास कर रहे होते हैं, तो जो टाइम पास कर रहे होते हैं कभी उनके पास नहीं आके बैठेंगे। वो सीरियस स्टूडेंट्स के पास आएंगे तो वो तो दूर की बात है, उनका मजाक भी उड़ाते हैं, क्या ये लोग पढ़ते रहते हैं और कोई काम धंधा नहीं इनके पास, किताबी कीड़े हैं सब ये सब, तो फिर कोई लाभ नहीं मिलेगा। फिर देखिए किसकी साधना अच्छी है, कौन अध्ययन करता है, क्योंकि किसी से कोई भी हम लोग अच्छा गुण ले सकते हैं। कुछ लोग अध्ययन करने में बहुत अच्छे हैं, उनसे वो शिक्षा ले सकते हैं। कुछ लोग चैंटिंग में बहुत अच्छे हैं, उनसे वो शिक्षा लीजिए। लेकिन ये सारी शिक्षाएं गुरु की सेवा के लिए अनुकूल होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि हम मार्ग से भटक जाएं। शिक्षाएं तो बहुत जगह से ले रहे हैं लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं बढ़ रही, तो कोई लाभ नहीं है फिर, तो बेकार है फिर, समय की बर्बादी है। शिक्षाएं ले सकते हैं लेकिन जिनसे हमने दीक्षा ली है वो सारी शिक्षा उनकी सेवा में लगनी चाहिए। ऐसा नरहरि सरकार ठाकुर बता रहे हैं भजनामृत में, तो ये बहुत जरूरी है। घर पे आप अच्छे विग्रह रख सकते हैं गुरु से परामर्श करके, वो बहुत जरूरी है पूछना। और अपनी परिस्थिति भी देखनी चाहिए कि आपके पास समय होगा या नहीं होगा। अच्छे विग्रह रखने के बाद ऐसा ना हो कि जब बंद हो जाए या उसी में समय बीत जाए आपका, ये श्रृंगार करना है, अभिषेक करना है, बहुत कुछ करना है, फिर पता चला आधा घंटा ही है सर जब करने का, फिर रात को हम आए 12 बजे तक जब करें रात, वो फायदा क्या है? अच्छा यही है कि हम लोग अगर मंदिर पास में है तो प्रभुपाद ने जो बोला है तो फिर ड्यूटीज रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंदिर पास है, आप मंदिर में जाके सेवा करें, ड्यूटीज का वहाँ दर्शन करें। कई हमारे जैसे सोनक ऋषिपुर हमारे हैं, वो तो वहाँ से आते हैं, विवेक विहार से आके आरती करते हैं, मंगल आरती कितने दिन वो आते हैं, हफ्ते में है ना, यही आके नहाते हैं दोबारा और फिर उसके बाद ऑल्टर में जाते हैं कपड़े चेंज करके। महाराज ने बोला हुआ जो भी आते हैं वो क्या ड्रेस चेंज करना पड़ेगा, यहाँ के दोबारा नहाना पड़ेगा, तो यहाँ के नहाते हैं दोबारा और फिर ड्रेस चेंज करके फिर जाते हैं ऑल्टर में, वो विवेक विहार से आते हैं। तो पास में जो है उनको तो फिर मतलब ही नहीं है रखने का। हाँ, दूर जो रहते हैं प्रभुपाद ने कहा है कि वो रख सकते हैं, क्योंकि मंदिर आने के लिए उनको दिक्कत होती है इस वजह से, उसके बदले हम लोग भगवान का चित्र रख सकते हैं। ऑल्टर जरूर होना चाहिए घर में, भगवान का चित्र रखें, पंचतत्व गुरु परंपरा नरसिंह भगवान षट गोस्वामी इस प्रकार रखें, तुलसी जरूर हो घर में, बहुत जरूरी है। समर्पण, आपसे समर्पण और डिमांड करते जाएंगे, आपको और शासन में लेके आएंगे। आप कितना अनुशासित रहना चाहते हैं या शासन में रहना चाहते हैं वो गुरु देखेंगे, गुरु आपके ऊपर रूल करेंगे। आप कितना रूल होना चाहते हैं ये टेस्ट है कि नहीं? अभी तक तो हमारी इच्छा थी हम शासन करें, जब तक संसार में बाहर तो हर व्यक्ति शासन ही करना चाहता है नहीं? लेकिन अब एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसके शासन में हमेशा रहना पड़ेगा 24 घंटे, वही गुरु है। गुरु मोरे मूर्ख देखी कोरिला शासन, महाप्रभु ने बोला, प्रकाशन सरस्वती को बोला, मेरे पर शासन किया मुझे मूर्ख देखकर, मेरे गुरु ने मेरे पर शासन किया, मैं तो उनके शासन में हूं, इसलिए उन्होंने बोला कि तुम वेदांत दर्शन नहीं समझ सकते हो, तुम केवल हरिनाम लो। तो उनको कह रहे थे वास्तव में महाप्रभु दूसरे तरीके से। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है कि एनालिसिस करना, ही बताया था हमने पिछली बार काफ़ी डिटेल में बताया था, वो कहाँ पे बताया, जयपुर में बताया था हमने, जयपुर में हम लोग गए थे अभी यात्रा में, वहाँ पे सेशन लिया था, तो वहाँ इंट्रोस्पेक्शन के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था। यही है कि अपने अनर्थों के बारे में पता होना चाहिए, अपनी बीमारी का जानना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी बीमारी का ही नहीं पता तो इलाज क्या कराओगे आप। इसलिए ग्रंथों को पढ़ के और गुरु और वैष्णव के बीच में रहकर अपने कमियों के बारे में पता करना चाहिए। जैसे नाड़ी वैद्य होता है ना, वो नाड़ी टच करके बता देगा आपके अंदर क्या बीमारी है। तो वैष्णव ऐसे होने चाहिए जो आपको बता सके कि आपकी क्या समस्या है, और अगर वो समस्या बताएं, अगर वो सही है तो हमारी नम्रता ये होनी चाहिए कि हम उसको स्वीकार कर लें कि हाँ ये हमारी समस्या है, फिर उसके बाद उस समस्या को दूर करने का निवारण पूछें। और साथ में एक साधना चार्ट हो हमारा कि रोज हम लोग जप करते हैं उसका स्टेटस देखें, पूरे हफ्ते में हमारा चैंटिंग का क्या स्टेटस रहा है, कितने बजे हम सोए थे, कितने बजे उठे हम लोग, क्या हमने रोज पढ़ाई की, ये सब पूरा असेसमेंट खुद कर लेना चाहिए। हम क्यों वेट करें कि कोई हमें काउंसलर मिलेगा, गाइड मिलेगा, तभी हम करेंगे। ये तो जीवन भर हम थोड़ा बच्चे बने रहेंगे। पक्षी समाज में भी जब पक्षी जो है बड़ा हो जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, तो उसके जो माता पिता उसको छोड़ देता है अकेले उड़ने के लिए। ये थोड़ा कि पूरे जीवन भर उसको लात साथ में लेकर उड़ाते रहते हैं। तो इसलिए हमें भी बड़ा होना है और खुद अपने पाँव में खड़ा होना चाहिए। साधु संघ की आवश्यकता है लेकिन कमज़ोर नहीं बने रहना चाहिए, आत्मान्वेषण खुद भी करते रहना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। प्रोग्रेस चार्ट होना चाहिए, क्या जब के समय नींद आती है नहीं आती है, क्या रोज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, क्या हम लोग केवल प्रसाद लेते हैं या हर जगह खाना खाते हैं जाके, तो कई चीज़ें ये देखना पड़ेगा। कितने भक्तों का हमने, अच्छे भक्तों का संग करते हैं या सत्संग में रहना अच्छा लगता है हमें, असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। एक चेकलिस्ट बना लीजिए, फिर डेली बेसिस पे रात को सोने से पहले आप चेक करते जाइए, आपको एक हफ्ते में पता चल जाएगा क्या स्टेटस है। फिर वो सारी बीमारी लेकर आप डॉक्टर के पास जाओ इलाज कराने, और इलाज के लिए फिर तैयार रहो। इसी को कहते हैं शासन में रहना। फिर वो आपको शासन में रखेंगे, वो खाली नहीं छोड़ेंगे आपको। शिष्य का मतलब यही है जो शासन में रहे।
क्या उसको यूज करना चाहिए?
डेलिबरेट नहीं करना चाहिए, गुरु के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अगर गुरु प्रमाणिक है तो। कोई अगर प्रमाणिक गुरु नहीं है, गुरु तो प्रमाणिक ही होते हैं, लेकिन जैसे भी हैं तथाकथित जैसे कई गुरु होते हैं, प्रमाणिक संप्रदाय ऐसा नहीं है, कथावाचक जैसे होते हैं कई, तो वो तो फिर ठीक है आप डेलिब्रेट करें, क्योंकि शास्त्र के आधार पर नहीं बोल रहे हो, शास्त्र के आधार पर उनका आचरण नहीं है। लेकिन अगर प्रमाणिक संप्रदाय में रहकर प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ली है तो फिर जैसा वो कहें वैसा करना चाहिए। हाँ, वहाँ बुद्धि लगाने का मतलब ये है कि मान लो आपको कहा है कि आप प्रचार करिए पश्चिम बिहार में, अब हाउस प्रोग्राम शुरू करिए, आपको इंस्ट्रक्शन मिल गया, हाउस प्रोग्राम तो करना ही करना है आपको शुरू, उसमें कोई समझौता नहीं है, लेकिन अब कैसे करना है उसके लिए आप दिमाग लगा सकते हैं। हाँ, वो प्रभुपाद ने कहा सिंसियरिटी के साथ इंटेलिजेंस भी जरूरी है, डिसाइपल का एक क्वालिफिकेशन सिंसियरिटी कम इंटेलिजेंस, बट उनके इंस्ट्रक्शंस पर डिलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। हाउस प्रोग्राम तो कह दिया, शायद हाउस प्रोग्राम उन्होंने ऐसे कह दिया होगा, उनका कुछ कहने का और मतलब होगा, वो है डिलिब्रेशन। इंस्ट्रक्शंस पर डिलिब्रेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि उस इंस्ट्रक्शंस को कैसे फॉलो करें और कैसे उसको और अच्छी तरह से करें, आगे बढ़ाया जाए, उस पर किया जा सकता है विचार, और वो करना चाहिए। हाँ, जैसे प्रभुपाद को कहा गया उनके गुरु मारने का, पाश्चात्य जगत में आप प्रचार करिए, फिर प्रभुपाद ने इंटेलिजेंस भी यूज किया ना अपना, कैसे करना करके, है कि नहीं? प्रभुपाद ने इंटेलिजेंस यूज किया, प्रभुपाद ने फिर छोटी छोटी बुक्स लिखी ताकि वो सबको समझ में आए, एक लेमैन भी समझ जाए। प्रभुपाद ने देखा कि ये लोग 64 माला नहीं कर सकते हैं, 16 राउंड्स किया, तो प्रभुपाद ने इंटेलिजेंस यूज किया। आचार्य हैं तो संस्थापक आचार्य होने के कारण प्रभुपाद ने कुछ प्रिंसिपल चेंजेस किए, आचार्य के पास पावर होता है वो करने का देश काल पात्र के अनुसार, तो प्रभुपाद ने स्थापित किया। लेकिन जो उनका इंस्ट्रक्शन था उनके गुरु महाराज का कि जब भी धन मिले आप पुस्तकें छापना, वो देखिए प्रभुपाद ने जीवन के अंतकाल तक किया, लेटे लेटे भी किया, जो 10th कैंटो 13 चैप्टर है उन्हें लेटे लेटे उन्होंने पब्लिश किया, ट्रांसलेशन किया उसको। तो प्रभुपाद ने वो सेवा अंतिम दिनों तक नहीं छोड़ी, उस पर कोई डिलिब्रेशन नहीं किया। वो तो शायद उन्होंने ऐसे कह दिया होगा कि धन मिले तो किताबें छापना, किताबें छापना अब क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या क्वालिटी होना चाहिए, किस स्टैंडर्ड में बुक्स पब्लिश होनी चाहिए। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट बनाया प्रभुपाद ने। तो दैट इज इंटेलिजेंस, गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए, कि लाइफ लॉन्ग एक प्लान बन जाए पूरा इस्कॉन के लिए, कम से कम 10,000 साल के लिए उन्होंने ऐसी योजना बना दी, तो उसको कहते हैं इंटेलिजेंस। हमारे भारत भी ऐसे, जैसे हमारे परंपरा में सबसे पहले भक्ति सिद्धांत से ठाकुर ने डायरोमस का कंसेप्ट शुरू किया कलकत्ता में, मायापुर में भी डायरोमस देख सकते हैं आप उनके मंदिर में, डायरोमा के थ्रू प्रीचिंग करना। प्रभुपाद ने इसको और आगे बढ़ाया डिट्रॉयट में और कई जगह पे, लॉस एंजलिस में और यहाँ पर भी, बॉम्बे में भी देख सकते हैं डायरोमस के थ्रू प्रीचिंग स्टार्ट किया है प्रभुपाद ने। हमारे भारत ने उसको और आगे बढ़ाया, म्यूजियम बनाया, साथ में रोबोट शुरू कर दिए। इसको कहते हैं इंटेलिजेंस। वही इंस्ट्रक्शन देखो, परंपरा के वही इंस्ट्रक्शन है, आचार्य को फॉलो कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज क्यों ना किया जाए, जो वो वही डायरम अगर बोल सकता है, हाथ हिला सकता है, तो वो तो और ज्यादा अच्छा है। सो दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस है कि प्रभुपाद ने जो इंस्ट्रक्शन दिया, योर ड्यूटी इज टू कंस्ट्रक्ट टेम्पल्स इन इंडिया, प्रभुपाद ने उनको 1969 में बोला महाराज को, तो इंस्ट्रक्शन आज भी फॉलो कर रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा। लेकिन वो कैसे करना है उसके लिए उनका इंटेलिजेंस है, और वो इंटेलिजेंस कैसे मिल रहा है उनको, वो भी प्रभुपाद से मिल रहा है, कृष्ण से मिल रहा है, गुरु परंपरा से मिल रहा है। बिकॉज ये इंटेलिजेंस स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, ये भी मेटेरियल इंटेलिजेंस नहीं है कि स्पेकुलेट कर रहे हैं, है कि नहीं, कि भगवत गीता के बदले कुछ और दिखा रहे हैं। तो बेसिक फिलॉसफी है, लेकिन रोबोट्स के थ्रू दिखाया जाए। अब वो रोबोट्स की नकल कई और लोग भी कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशंस भी कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग आचार्यों से ही सीख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस को कैसे फॉलो किया जाता है दिल्ली में। हाँ, तो इसलिए देखिए पंजाबी बाग में कृष्ण बलराम स्थापित हो गए। अब उसको कैसे स्थापित करना है, वो कैसे मंदिर मिलेगा, वो सब आपको यूज करना पड़ेगा अपना इंटेलिजेंस, वो आपका प्रयास है कि नहीं। दैट इज इंडिविजुअलिटी, नहीं तो इंडिविजुअलिटी तो खत्म हो जाएगी ना। आपकी इंडिविजुअलिटी क्या रही फिर, आपका कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। तो इंस्ट्रक्शन को फुलफिल करने के लिए आप बुद्धि का उपयोग करते हैं, और बुद्धि हमें मिलती है गुरु साधु शास्त्र से, वैष्णव समाज में रहकर, अन्य वैष्णवों से परामर्श करके, वरिष्ठ वैष्णवों से पूछ के, अलग अलग वैष्णवों से सुझाव लेके हम अपनी बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। तो उसमें ये नहीं कि हम अपना इंटेलिजेंस यूज करेंगे, किसी से नहीं पूछेंगे, हमें किसी की सजेशन की जरूरत नहीं है, कि गुरु ने हमें आगे दे दिया है, अब मैं किसी पूछूंगा नहीं, वो भी नहीं होना चाहिए। तो अन्य वैष्णवों से पूछ सकते हैं इस तरह से, जैसे कहे कुछ लोग यूथ प्रीचिंग में अच्छे हैं, जैसे राधेश्याम प्रभु अच्छा यूथ प्रीचिंग कर रहे हैं, कुछ लोग यूथ प्रीचिंग कर रहे हैं तो उनसे सजेशंस ले रहे हैं, उनके पास जाके सीख रहे हैं। कुछ कंग्रेगेशन प्रीचिंग अच्छा कर रहे हैं तो उनसे जाके सीख रहे हैं। तो उससे क्या है कि वो अपने गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन को और अच्छा फॉलो कर पाते, इसलिए ठीक है। हरे कृष्ण हरि नाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त ब्रह्म की।